इनाया अब भी विंडो के पास खड़ी थी, जाने उस अंधेरे में क्या ढूंढने की कोशिश कर रही थी। जहन में पुरानी यादें किसी वीडियो की तरह घूम रही थीं। वो वक्त जब उसने मानव से कहा था कि उसे कायरव पर विश्वास है, वो उसे ज़रूर ढूंढ लेगा। उस वक्त मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये इंतज़ार इतना लंबा होगा, तुम मेरे पास आने में इतना टाइम लगा दोगे। अब तो तुम्हारी राह देखते देखते ये आँखें भी थक गई हैं, लेकिन दिल में कहीं एक उम्मीद की हल्की सी लौ अब भी जल रही है कि तुम मुझे ढूंढ लोगे, आ जाओगे मेरे पास। इनाया ने ठंडी आह भरी और आकर वापस काकी के पास लेट गई। इन महीनों में काफ़ी कुछ बदल गया था। मानव पूरी तरह से ठीक हो गया था, अब सब कुछ वही संभाल रहा था। रामलाल कभी कभी मिलने आ जाया करता था। उन्होंने ही मानव को अपने नाम से दो नंबर भी इशू करवा कर दिया था, दो फ़ोन भी दिलाया था, क्योंकि इनाया और मानव दोनों के पास अपना आईडी प्रूफ नहीं था, फ़ोन भी नहीं था। एक फ़ोन मानव के पास रहता था, दूसरा घर पर। ये घर भी रेजिडेंशियल एरिया से थोड़ा दूर एकांत में बना था और काफ़ी पुराना था, सालों से बंद भी, जिसे रामलाल ने उनके रहने लायक बनवा दिया था, तो वो बिना किसी की नज़र में आए आराम से यहाँ रह रहे थे। इनाया ने बाहर निकलना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। कभी अगर बाहर जाना भी पड़ता तो अपना फेस कवर करके जाती थी। काकी तो घर पर ही रहती थी, उन तीनों को ही कायरव का इंतज़ार था। लेकिन साथ ही वो ये भी जानते थे कि ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि कायरव को कुछ भी नहीं पता था। वो कहाँ हैं, कैसे हैं, उनके साथ क्या हुआ, वो इन सब से पूरी तरह से अनजान था। इन्हीं सब के बारे में सोचते हुए इनाया की आंख लग गई। अगले दिन सुबह की उसकी अपॉइंटमेंट थी। सूट सलवार के ऊपर दुपट्टा डाले वो मानव के साथ घर से निकली, और जैसे ही रेजिडेंशियल इलाका शुरू हुआ, इनाया ने दुपट्टे से अपना चेहरा कवर कर लिया। अब बस उसकी वो दो कझारी आंखें ही दिख रही थीं। शाम का वक्त था, कायरव अपने कैबिन में बैठा था। उसकी उंगलियां लगाकर सामने रखे कीबोर्ड पर थिरक रही थीं और नजरें स्क्रीन पर टिकी थीं। कैबिन में एकदम सन्नाटा पसरा था और कायरव के चेहरे पर सर्द एक्सप्रेशन मौजूद थे। अचानक तेज आवाज के साथ उसके कैबिन का डोर खुला और नितिन बदहवास सा दौड़ता हुआ सीधे उसके डेस्क के पास आकर रुका। वो बुरी तरह हाँप रहा था, जैसे मैराथन से लौटा हो। चेहरा पसीने से भीगा था, सांसें उखड़ रही थीं। वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आवाज़ गले से बाहर ही नहीं निकल रही थी। कायरव नितिन की हालत देखकर चौंका और माथे पर कुछ सिलवटें उभरी और आंखें सोचने के अंदाज में सिकुड़ गईं। बैठ जा, सांस ले ले, कायरव ने पानी का ग्लास उसके तरफ बढ़ाया। ले पकड़, पानी पी, रिलैक्स हो जा, उसके बाद बता क्या हुआ है, कहाँ से दौड़कर आ रहा है तू, ये कैसी हालत बना रखी है तूने, ऐसा क्या बताना चाहता है कि अपने नॉर्मल होने तक का इंतजार नहीं किया जा रहा तुझसे। नितिन ने ग्लास पकड़ा और एक सांस में पूरा पानी पी गया, लेकिन उसकी सांसें अब भी नॉर्मल नहीं हुई थीं। वाह, भाभी मिल गई, बमुश्किल नितिन की लड़खड़ाती जुबान से ये शब्द बाहर निकले और कायरव पूरी तरह चौंक गया। व्हाट, सच यार, भाभी मिल गई, नितिन ने गंभीरता से कहा। उसके लहजे में खुशी की खनक थी और चेहरे पर कई महीनों बाद आज इत्मीनान नजर आ रहा था। कायरव को झटका सा लगा, उसे तो जैसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। तो तू सच कह रहा है, इनाया मिल गई? हाँ यार, मैं सच कह रहा हूँ, तेरा इंतजार अब खत्म हुआ, इतने महीनों की मेहनत के बाद फाइनली हमें भाभी की खबर मिल गई है, नितिन मुस्कुराया। कहाँ, कहाँ है वो, तुझे कैसे पता चला, बता मुझे इस वक्त कहाँ है वो, मैं अभी उसके पास जाना चाहता हूँ। कायरव एकदम से चेयर छोड़कर उठ खड़ा हुआ। वो इतना बेकरार और बेसब्र हो रहा था कि अगर उसका बस चलता तो अभी उठकर उसके पास पहुंच जाता। अब तो इतना बेचैन और उतावला क्यों हो रहा है, सब रख भाई। नितिन, बकवास मत कर और बता मुझे कहाँ इनाया, मैं अभी और इसी वक्त उसे मिलना चाहता हूँ। कायरव बेहद सीरियस था, नितिन ने भी मजाक पर ब्रेक लगाया। उसकी मुस्कुराहट भी थोड़ी सिमट गई। ये तो अभी पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्यों पॉसिबल नहीं है, अभी तूने ही तो कहा कि इनाया मिल गई है, फिर मैं उसे मिल क्यों नहीं सकता। कायरव एकदम से हाइपर हो गया, नितिन भी थोड़ा परेशान हो गया। पहले तो यहाँ बैठ, पानी पी और रिलैक्स होकर मेरी बात सुन। नितिन ने कायरव को चेयर पर बिठाया और पानी दिया, लेकिन कायरव ने उसका हाथ हटा दिया। नहीं, मुझे अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू बस मुझे इतना बता कि जब इनाया मिल गई है तो मैं उसे मिलने क्यों नहीं जा सकता। कायरव की आंखों में अजीब सी बेचैनी घुली थी, जो उसकी आंखों में भी दिख रही थी। एक्चुअली भाभी कहाँ है हमें ये तो पता चल गया, लेकिन उनकी एग्जैक्ट लोकेशन अभी हमारे पास नहीं है। क्या मतलब हुआ इस बात का, कायरव की भौहें सिकुड़कर आपस में जुड़ गई। नितिन ने अपना फ़ोन निकाला और कुछ करने के बाद स्क्रीन उसकी तरफ घुमा दी। ये वो जगह है जहाँ मानव को देखा गया है, जयपुर का आउटर एरिया है ये। इस फोटो में ये जो क्लिनिक का बोर्ड दिख रहा है, वो यहाँ आया था किसी लेडी के साथ जिसने अपना चेहरा कवर किया हुआ था। मुझे लगता है कि वो भाभी ही होंगी और कोई उन्हें पहचान ना ले, इसलिए उन्होंने अपना फेस कवर किया होगा। मानव का हुलिया भी बदला हुआ था, लेकिन यहाँ से वो कहाँ गए अभी तक इसका पता नहीं चल सका है। हमारे आदमी लगे हुए हैं, उम्मीद है जल्दी ही हमें भाभी की एग्जैक्ट लोकेशन भी मिल जाएगी, उसके बाद हम वहाँ जा सकते हैं। लेकिन मैं क्या सोच रहा था, जैसे हम भाभी को ढूंढ रहे हैं वैसे तेरे डैड भी तो उन्हें ढूंढ रहे होंगे। अगर तू ऐसे अचानक वहाँ गया तो कहीं तेरे डैड को शक ना हो जाए। अगर हमसे पहले वो वहाँ पहुँच गए और फिर से भाभी को किडनैप कर लिया, फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। कायरा विनाया से मिलने के लिए बेकरार था और थोड़ा मायूस हो गया था, लेकिन जब उसने नितिन की लास्ट की बात सुनी तो उसके माथे पर सिलवटें उभर आईं। वहाँ जाने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। जयपुर के आउटर में एक अच्छी डील आई है, 20-25 एकड़ का प्लॉट है, रिजॉर्ट और स्पा के लिए परफेक्ट। लोकल एजेंट ने फोटोज भेजे हैं, लेकिन मैं खुद देखकर कंफर्म करना चाहता हूँ। कल सुबह निकल रहा हूँ, कुछ दिनों में वापस आ जाऊँगा। कायरव की बात सुनकर नितिन चौंक गया और हैरानगी से उसे देखने लगा। कायरव ने नजरें उठाकर उसे देखा और गंभीरता से बोला, सबको ये बताना है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मेरे वहाँ जाने की असली वजह क्या है। मैं काम के सिलसिले में वहाँ जा रहा हूँ, डैड तक यही बात पहुँचनी चाहिए। मैं आज रात की फ्लाइट से निकलूंगा, तब तक राजस्थान में हमारे जितने आदमी हैं उन्हें उस तरफ भेज दे। मैं इनाया तक पहुँचूँ उससे पहले कोई और उस तक नहीं पहुँचना चाहिए। ओके, नितिन ने तुरंत सर हिलाया और वहाँ से चला गया। उसके पास करने के लिए बहुत कुछ था और टाइम कम था। कायरव ने चेयर की बैक से सर टिकाया और आँखें बंद कर लीं। उसके चेहरे पर सर्द एक्सप्रेशन मौजूद थे और झुकी पलकों के आगे इनाया का दिलकश चेहरा उभर आया था, जो धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। और अगले ही पल कायरव ने चौंकते हुए अपनी आंखें खोल दी। नहीं, इस बार मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, इस बार कोई तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर पाएगा। बहुत इंतजार किया है मैंने, अब कोई गलती नहीं होगी। बहुत जल्द मैं तुम्हारे पास होऊंगा, मैं तुम्हें वापस अपने घर लेकर आऊंगा। एक बार तुम सेफली मुझ तक पहुंच जाओ, उसके बाद जिन जिन ने मिलकर तुम्हें मुझसे दूर जाने पर मजबूर किया है, हर उस इंसान को इसका अंजाम भुगतना होगा। किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं, किसी को भी नहीं। कायरव की आंखें खतरनाक अंदाज में सिकुड़ गई थी, अजीब सा जुनून सवार था उसके सर पर।
कायरव के आदमी जो इतने महीनों से इनाया और मानव को ढूंढ रहे थे, अब उस इलाके में फैल चुके थे और सबसे पूछताछ की जा रही थी। गए तो वो क्लिनिक में भी, लेकिन वहां से उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। मानव की फोटो दिखाकर पूछते पूछते वो वहां के मशहूर लकड़ी के कारखाने तक पहुंच गए थे, लेकिन अभी तक उन्हें कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। मिस्टर रायचंद के आदमी भी उसी एरिया के आसपास थे। एक तरफ कायरव था जो बेसब्री से रात होने का वेट कर रहा था, तो दूसरे तरफ इनाया थी जिसका दिल घबरा रहा था, जैसे कुछ गलत, बहुत गलत होने वाला हो। टू बी कंटिन्यूड।